शाम ढलते ढलते पूरी हवेली का माहौल बदल चुका था। बड़े हॉल की सफाई सुबह से ही शुरू हो गई थी। पुराने झूमरों की रोशनी अब हल्की कर दी गई थी ताकि कमरे में थिएटर जैसा एहसास आए। सामने दीवार पर बड़ा सफ़ेद स्क्रीन लगा दिया गया था और उसके ठीक सामने लंबे लंबे सोफे और गद्देदार दीवान सजा दिए गए थे। एक तरफ बड़ी मेज़ पर खाने पीने का पूरा इंतज़ाम था। गरम समोसे, पॉपकॉर्न से भरे बड़े कटोरे, चिप्स, मिठाइयाँ और कांच की बोतलों में ठंडी ड्रिंक। अदिति पूरे समय नौकरों को निर्देश देती घूम रही थी। अरे नहीं नहीं, पॉपकॉर्न इधर रखो और लाइट थोड़ी कम करो ना। आर्यन सोफे पर बैठे बैठे उसे देख रहा था। तुमने फिल्म नाइट रखी है या पूरा अवार्ड शो? अदिति ने तुरंत कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। चुप रहो। पास बैठी सुषमा देवी हंस पड़ी। रत्ना देवी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी सब देख रही थीं। उम्र के साथ उनके चेहरे पर जो ठहराव आ गया था, उसमें आज हल्की बच्चों जैसी खुशी भी शामिल हो गई थी। उसी समय सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सबकी नज़र ऊपर उठ गई। विश्वनाथ नीचे उतर रहा था, हमेशा की तरह सीधा, गंभीर और संतुलित। आज उसने घर के कपड़े पहने थे, गहरे ग्रे रंग की ढीली शर्ट और काली ट्राउज़र। हाथ में घड़ी अब भी थी, जैसे आदत हो जिसे वो कभी नहीं उतारता। उसके पीछे शामली नीचे आ रही थी। उसने हल्के क्रीम रंग का सूती साड़ी पहनी थी। खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद वही नरमी थी। विश्वनाथ सीधा नीचे आया और बिना कुछ बोले सबसे पीछे वाले बड़े सोफे पर बैठ गया। उसका वही शांत और थोड़ा रूखा स्वभाव अब भी कायम था। वो ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं था, लेकिन उसके बैठते ही शामली भी चुपचाप जाकर उसके बगल में बैठ गई। अदिति ने तुरंत आंखें से कोड़ ली। देखा, मैंने कहा था ना, दोनों अब एक दूसरे से 2 फुट दूर भी नहीं बैठते। अदिति, शामली ने धीमे से टोका, लेकिन आर्यन हंस पड़ा। विश्वनाथ ने बस एक नज़र दोनों पर डाली, ना कुछ कहा ना मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की हल्की ढील देखकर सब समझ गए कि वो बुरा नहीं मान रहा। कुछ देर बाद फिल्म शुरू हो गई। हॉल की बड़ी लाइट बंद कर दी गई। अब बस स्क्रीन की बदलती रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही थी। शुरुआत में सब फिल्म पर ध्यान दे रहे थे। अदिति हर मज़ेदार सीन पर जोर से हंसती, आर्यन बीच बीच में उसे शांत करवाता। सुषमा देवी कहानी में खोई हुई थीं, जबकि रत्ना देवी कभी फिल्म देखती कभी बच्चों को, लेकिन पीछे बैठे विश्वनाथ का ध्यान बार बार स्क्रीन से हटकर शामली पर चला जाता। कभी उसके चेहरे पर पड़ती नीली रोशनी, कभी हंसते वक्त उसकी आंखों का हल्का सिकुड़ना, कभी बालों को कान के पीछे करने की आदत, वो बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता। शामली ने 2-3 बार महसूस किया। पहले उसने अनदेखा किया, फिर धीरे से उसकी तरफ झुकी। फिल्म देखिए। विश्वनाथ की नज़रें फिर भी उसी पर टिकी रहीं। देख रहा हूँ मुझे, उसने बहुत हल्के स्वर में कहा। उससे बेहतर कुछ दिख नहीं रहा। शामली के गाल हल्के गर्म हो गए। उसने तुरंत सामने देखने की कोशिश की। प्लीज़, यहाँ सब बैठे हैं। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। उसका चेहरा फिर वही गंभीर हो गया, लेकिन आंखों की नरमी गायब नहीं हुई। कुछ देर बाद फिल्म में एक इमोशनल सीन आया। स्क्रीन पर माँ बेटे का झगड़ा चल रहा था। हॉल में कुछ सेकंड के लिए शांति छा गई। अदिति धीरे से बोली, यार ये सीन थोड़ा दुखी कर गया। आर्यन ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। तुम हर चीज़ में रोने लगती हो। तो क्या करूँ, दिल है मेरा। सुषमा देवी मुस्कुरा दी। रत्ना देवी ने अचानक पीछे बैठे विश्वनाथ की तरफ देखा। तुम छोटे थे ना, तब बिल्कुल ऐसे ही थे। विश्वनाथ ने भौं हल्की सिकोड़ दी। कैसे? चुप। सब हंस पड़े। रत्ना देवी आगे बोली, अगर कोई खिलौना टूट जाता था तो बाकी बच्चे रोते थे, लेकिन ये बस दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता था, ना कुछ बोलता ना शिकायत करता। शामली ध्यान से सुन रही थी। उसे शायद पहली बार विश्वनाथ के बचपन की बातें सुनने मिल रही थीं। अदिति तुरंत बोली, मतलब बचपन से ही इतने रूढ़ थे? अदिति, आर्यन ने टोका, लेकिन रत्ना देवी खुद हल्का हंसती, रूढ़ नहीं, बस दिल की बातें दिखाता नहीं था। कुछ सेकंड के लिए विश्वनाथ चुप रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हर बात दिखाना ज़रूरी नहीं होता। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह भारी और स्थिर थी, लेकिन इस बार उसमें कड़वाहट नहीं थी। शामली ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। वो समझ रही थी उसके भीतर कितना कुछ ऐसा है जो वो कभी शब्दों में नहीं कहता। फिल्म आगे बढ़ती रही। बीच बीच में हल्के मजाक होते रहे। अदिति कभी पॉपकॉर्न गिरा देती, कभी आर्यन से बहस करने लगती। एक बार तो उसने पूरा कटोरा ही तिरछा कर दिया। अरे, वो घबरा गई। आर्यन माथा पकड़कर हंस पड़ा, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, जानबूझकर नहीं गिराया। सुषमा देवी भी हंसने लगी। रत्ना देवी ने सिर हिलाया, तुम दोनों घर सिर पर उठा लोगे। उसी बीच सबकी नज़र अचानक विश्वनाथ पर गई, क्योंकि उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई थी, बहुत छोटी लेकिन साफ दिख रही थी। अदिति ने तुरंत उंगली दिखा दी, देखा देखा, पापा हंसे। विश्वनाथ का चेहरा तुरंत फिर सामान्य हो गया। फिल्म देखो। लेकिन अब हॉल में सबकी हंसी और बढ़ गई। शामली चुपचाप उसे देखती रही। उसे पता था विश्वनाथ खुलकर हंसने वालों में से नहीं है। वो अपनी भावनाओं को संभाल कर रखने वाला आदमी है,
लेकिन आज वो कोशिश कर रहा था सिर्फ परिवार के लिए। कुछ देर बाद फिल्म का रोमांटिक सीन शुरू हुआ। स्क्रीन पर हीरो हीरोइन बारिश में खड़े थे। अदिति तुरंत मुस्कुराने लगी। अब आया मजा। विश्वनाथ ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा, अगर ज्यादा ड्रामा हुआ तो फिल्म बंद कर दूंगा पापा। अदिति जोर से हंस पड़ी। श्यामली ने धीरे से होंठ दबाए ताकि उसकी हंसी बाहर न निकले, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ विश्वनाथ का हाथ धीरे से उसके हाथ के ऊपर आकर टिक गया है, बहुत सामान्य तरीके से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। श्यामली ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो स्क्रीन ही देख रहा था, चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी उंगलियों की पकड़ हल्की मजबूत थी। श्यामली धीरे से फुसफुसाई, सब सामने है। विश्वनाथ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो कोई देख लेगा। देखने दो, उसके छोटे और सीधे जवाब में वही पुराना अधिकार था। श्यामली का दिल फिर हल्का तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं हटाया। फिल्म खत्म होते होते रात काफी हो चुकी थी। हॉल की लाइट दोबारा जल उठी। सबके चेहरों पर थकान के साथ सुकून भी था। अदिति लंबी सांस लेकर सोफे पर फैल गई। मजा आ गया। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ काफी दिनों बाद ऐसा टाइम मिला। सुषमा देवी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। रत्ना देवी की आंखों में भी संतोष था। और पीछे विश्वनाथ अब भी शांत बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे की कठोरता थोड़ी कम लग रही थी। श्यामली ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिली। ना कोई बड़ा संवाद हुआ, ना कोई दिखावा, बस एक छोटी सी खामोश समझ थी कि इस हवेली में अब सिर्फ रिश्ते नहीं, अपनापन भी बस चुका था।